ओम शांति। कल प्यारे अव्यक्त बाप दादा से हमने इस सीजन की लास्ट अव्यक्त मुरली इस सीजन की सुनी और आज उसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे, ताकि उस बाबा के ज्ञान की गहराई जो भी है मुरली की उसको हम अच्छे से समझ सके, धारण कर सके और उसके आधार पर अपना पुरुषार्थ कर सके। मैं पहले टाइमिंग बता दूं, गुर्जर दादी स्टेज पर बैठे और ध्यान में जाने का गीत जो बजा वो 7:23 पर वो गीत बजा। 7:27 पर गुर्जर दादी जी सूक्ष्मावतरण में बाबा के पास पहुंचे। 5 मिनट के बाद अर्थात 7:32 को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई और 7:40 तक सबको दृष्टि दे करके बाबा ने मुरली शुरू किया। मेन मुरली जो है 30 मिनट चली, अर्थात 8:10 तक मुरली चली। उसके बाद बाबा ने ही कहा आज कौन सा जोन आया हुआ है, ऐसा कर करके सवाल पूछा और फिर जोन के से कर साथ में बात किया। तो कल बाबा ने वो डिस्टिंक्शन नहीं रखा, पहले तो क्या करते थे, मुरली पूरी करते थे, फिर जोन से बात करते थे, फिर डबल विदेशियों से बात करते थे, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंटलाइज करके बात करते थे। कल बाबा ने ऐसा नहीं कहा, जैसे जोन के साथ बात करते हुए भी मुरली की पॉइंट्स को आगे बढ़ाते रहे। तो इस प्रकार से 8:10 को जोन के साथ बातचीत करना शुरू किया, उसमें मुरली भी चालू रही। उसके बाद पहली बार जो आए हुए हैं, बाबा ने अपने आप ही पूछा पहली बार कौन आए हुए हैं, तो उसके ऊपर बाबा ने 8:28 को वो पहली बार के बताया। बाबा ने सबको कहा देखो पहली बार कितने आए। हमारे बाजू में निर्वय भाई बैठे हुए थे, इन्होंने कहा कि इस ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा में ज्यादा पहली बार आए हुए हैं। सारी सभा में से 75-80% बहन भाई जो भी है वो पहली बार आए हुए थे। तो ये बताते हैं कि यह विश्वविद्यालय का यज्ञ का विस्तार कितनी तेजी से जा रहा है। कल के सभा में जितने भी थे उसमें से कम 20,000 लोग जो है, 20,000 भाई बहन जो है वो नए थे। हर ग्रुप में नए 20,000, 15,000, 20,000 इस प्रकार से आते रहे। इनसे सिद्ध होता है यह विश्वविद्यालय का कारोबार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर मुन्नी बहन ने बताया इंदौर की हॉस्टल की कन्याएं आई हुई है, वो 8:32 को कहा। फिर बाबा ने इस सीजन की ये अंतिम मुरली है इसके बारे में 2 कार्य करने के लिए कहा, वो 8:36 को कहा। उसके बाद डबल विदेशियों से बाबा ने बात किया, 8:47 को डबल विदेशियों से बात किया। फिर मुन्नी बहन ने बताया कि 2,000 टीचर्स बहने आई हुई है, उसको बाबा ने 8:55 को बात किया और 9:05 तक इनसे बात करते हुए उसके बाद स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ और 9:35 अव्यक्त बाप दादा ने हम बच्चों से विदाई लिया। अर्थात 7:32 को आए और 9:35 2 घंटा और 3 मिनट बाबा हम बच्चों के साथ में रहे। कैसे कल विदाई लिया वो तो आप सबने देखा। वो इसलिए कल ये सब बातें हैं, हर कई बातें ऐसी नई नई हुई है कि इसके लिए उसका अंदाज लगाना बहुत कठिन है। पहली बात, सबसे पहली बात आपको कईयों को मालूम नहीं होगा, पर तो हमारे यह यज्ञ में मालूम हमको सबको है कि हमारा जो ईमेल रोजरी जो होती है ना, वो ईमेल रोजरी के अंदर किसी ने गलत ईमेल भेज दिया था। गलत ईमेल, मैं फिर से कह रहा हूँ, गलत ईमेल भेज दिया था कि अभी अव्यक्त बाप दादा अभी आने वाले नहीं है, ये सीजन बाबा की लास्ट सीजन है, इसके बाद बाबा नहीं आने वाले। तो सबके मन में बहुत, हम लोगों ने मना किया कि गलत ईमेल गया हुआ है, तो भी कईयों के मन में वो संकल्प था कि शायद हाँ हम लोग छुपा रखे हैं बात को, क्या है क्या नहीं। इस प्रकार से कईयों के मन में यह संकल्प विकल्प चलता था, क्योंकि वो ईमेल यहाँ से ही मतलब किसी ने हमारे नाम पर ही यज्ञ के नाम पर भेजा हुआ था। और फिर कल बाबा ने ही कहा कि दूसरी सीजन में मैं आऊंगा तो मैं क्या देखूंगा। बाबा ने कहा ना निर्विघ्न, क्या कौन सी सभा में अगली सीजन में आऊंगा तो देखूंगा, निर्विघ्न और बाप के दिल पसंद सभा होगी, कहा ना। इनसे सिद्ध हो गया कि बाबा अगली सीजन में आने वाले हैं, हम सबको उसकी तसल्ली बाबा ने दे दिया। अर्थात जो एक झूठा मालूम नहीं किसने लिख करके भेजा, कैसे गया हमें भी मालूम नहीं, हमने बहुत इंक्वायरी किया, परंतु जिसने भेजा उसने अपने आप को बहुत गुप्त रूप में रखा हुआ था। तो इस प्रकार से ये पहली बात जो है, पहली भ्रांति जो है, पहली गलत इन्फॉर्मेशन जो गई हुई थी उसको बाबा ने खारिज कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ी तसल्ली की बात थी। बाकी तो आप जानते हैं, कल मुरली का खजाना जो था उसके ऊपर राजू भाई ने शॉर्ट में लिखा है, शुभ भावना से एक दो के सहयोगी बन निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना, सदा खुश रहना और सबको खुश करना, ये मुरली का कल की अव्यक्त मुरली का सार है। बाबा ने आकर के ही मुरली जैसे स्टार्ट किया, हाँ बाबा ने कहा कि आज सर्व खजानों के मालिक, बाबा ने अपना परिचय क्या दिया। देखो अलग अलग प्रकार से बाबा अपना परिचय देते हैं, कभी क्या देते हैं कभी क्या देते हैं। कल बाबा ने अपना परिचय क्या दिया, बहुत सुंदर इससे परिचय दिया, पहले अपना ही परिचय दिया और उसके आधार पर हम बच्चों को उस परिचय के लायक बनाया। क्या आप सर्व खजानों के मालिक, अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को भी, हम बच्चों को भी खजानों से संपन्न उनको देख खुश हो रहे हैं। और बाबा ने कहा बाप के दिल में क्या निकलता है, वाह बच्चे वाह। और बाबा ने क्या कहा, देखा कि हर एक के सूरत में खजानों के प्राप्ति की चमक चमक रही है, खजानों की प्राप्ति की चमक चमक रही है। कितना सुंदर साहित्य है, खजानों की चमक चमक रही है। तो इस प्रकार से जिन्हों को भाषण करने की इच्छा होती, जैसे दादी जानकी भी कहती है ना, इतने गुण है इतने ये है, इस प्रकार से संख्या बताती है, इस प्रकार से बाबा एलिट्रेशन आदि के द्वारा बहुत सुंदर रूप में बताते हैं। तो इसलिए चमक चमक रही है। मेजोरिटी बच्चों के खजानों से भरपूरता की चमक दिखाई दे रही है। और बाबा हर एक बच्चों का, आज दादी जानकी ने भी कहा कि बाबा परमात्मा हम बच्चों को आज गुणगान करें, ये कभी भी भक्ति मार्ग में हम लोगों ने किसी ने सोचा भी नहीं था और वो हकीकत हो रही है। और बाबा क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह, वर वाह वाह बच्चे, क्यों कि बाप ने कहा और बच्चों ने किया। फिर बाबा ने दो बात कही हुई है, थोड़ा ग्रामेटिकल फर्क कर करके, जिनके चेहरे पर नहीं दिखाई देता है उनको क्या करने का, और जिनके चेहरे पर चमक दिखाई रही है उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बात पर इतना सुंदर तरीके से कहा हुआ है। पहली बात, जिनके मुख पर चेहरे पर चमक नहीं दिखाई पड़ती उसके लिए क्या कहा है, सुनिए। बाप कहते हैं हर एक बच्चों की सूरत में, मस्तक में खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। क्या कहा, खजाने के मालिकपन की झलक दिखाई देनी चाहिए। दिखाई देनी चाहिए माना अब दिखाई नहीं पड़ रही, तो जिनके मुख पर मस्तक पर ये दिखाई नहीं दे रही, मालिकपन की झलक नहीं दिखाई पड़ती है, उनको क्या पुरस्कारत करने का है, कैसा पुरस्कारत करें कि इनके मुख पर उनके चेहरे पर मालिकपन की झलक दिखाई दे। और फिर दूसरा, और बाप दादा आज हर खजानों के अधिकारी बच्चों में देख खुश हो रहे जिनों के मुख पर दिखाई पड़ते हैं उनके लिए क्या कहता है, ऐसे खजानों के अधिकारी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं, बाप खुश हो रहे हैं और क्या गीत गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। हाँ, तो जिनके मुख पर नहीं है उनके लिए क्या कहा कि ऐसा करना चाहिए, और जिनके मुख पर दिखाई पड़ता है उनके लिए कहा कि वाह बच्चे वाह। इसलिए बाबा ने कहा आज, और फिर यहाँ सभा में बैठे हुए थे उनके, बाबा ने क्या किया, इतनी अच्छी जिसे रमणीकता से कल की मुरली चलाई, इसके कारण क्या हो गया, सबकी मूर्ख जो सूर्य सीरज जो है एकदम खुशी से चमक रही थी। सबको ऐसा किया था कि कोई ऐसा यहाँ दुखी बैठा हुआ होगा, कल सबकी मुख में मुख के ऊपर झलक दिखाई पड़ती थी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आज हर एक की सूरत में खजानों से भरपूरता की झलक है, ऐसा ऐसा क्या होना चाहिए, अभी जो दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो तो बाबा के ज्ञान के आधार पर, बाबा ने मुरली चलाई उसके आधार पर जो झलक दिखाई दे रही थी, वो बाबा कहते हैं ऐसी झलक जो है सदा रहे। क्या ऑपरेटिव पार्ट क्या है, सदा रहे। और फिर देखिए बाबा नई सेवाएं पिछली तीन मुरली से बता रहे हैं, पिछली तीन मुरली में चेहरे की बात आती है। ये आज तक हमने तन से मन से धन से सबसे इस प्रकार से सेवा किया हुआ है, इस प्रकार की जो प्रदर्शनी की है, कॉन्फ्रेंस किया आदि आदि जो किया वो अलग बात है, परंतु पिछली तीन मुरली से बाबा ये जो चेहरे के द्वारा इसके द्वारा सेवा करने का जो नया तरीका सिखा रहा है उसका कारण क्या, बाबा ने खुद नहीं कहा हुआ है, जो कहते हैं कोई भी देखे आपकी शक्ल बोले, आपकी शक्ल जो है आपका मुख जो है वो बोले, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारा चेहरा हमारा मुख बोले। तो सदा चेक करो, जैसे अभी आपके चेहरे चमक रहे हैं ऐसे सदा रहते हैं, कोई भी देखे चेहरा बतावे, मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं चेहरा बोले। आज तक हम मुख से बोलने की सेवा ये करते रहे, बाकी सब प्रकार की सेवा करते थे, अब चेहरा बोले, कारण क्या है, क्या आगे बताएंगे, कारण भी बाबा बताते हैं। और ये खजाने के द्वारा क्या कभी कैसे चमक होनी चाहिए, सर्वे खजाने से संपन्न, चाहे कर्म करते समय पर, कर्म करते रहो, सबको कर्म तो करना है, कर्म योगी बनना ही है, तो कर्म करना है, चाहे योग करना है और चाहे बाप की याद में रहना है। आपके मन में प्रश्न होता होगा, चाहे योग में योग करते और चाहे बाप की याद में रहते, योग करते और बाप की याद में रहने में कोई फर्क होगा, क्या होगा ये सोचना आप उसके ऊपर। ये बाबा ने ऐसा दो अलग करके क्यों ऐसे अलग किया और उसके आधार पर दोनों का अलग अलग प्रभाव क्या है, हाँ वो सोचने की बात है। हाँ, थोड़ा हरेक को अपने अपने तरीके से विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। चेहरा चाहे क्या करे ऐसे दिखाई दे, हरेक अपने चमकते हुए चेहरे समान रह सकते हैं ना, क्यों, फिर बाबा ये आगे बताते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको बाबा अंग्रेजी में हम कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, अंतिम समय में अंतिम समय की सेवाएं क्या हो सकती है। एक बार हमने बाबा को संदेश भेजा था कि बाबा अभी ईश्वरीय सेवा का इतना कारोबार बढ़ गया है कि हमको 24 घंटा कम पड़ता है, ऐसा हमने बाबा को संदेश भेजा था। स्टेज पर बाबा ने उसका जवाब दिया, बाबा ने कहा, बहुत सुंदर जवाब दिया, बाबा ने कहा अभी तो सेवा कहाँ हुई है, अभी तो सेवा कहाँ इतनी हुई है जितनी अंतिम समय में होने वाली है, आप समझ गए, अभी तक इतनी कितनी सेवा जितनी अंतिम समय में सेवा होने वाली है इतनी सेवा और उसकी रफ्तार अभी हुई नहीं है। और बाबा ने फिर आगे कह दिया, अंतिम सेवा के लिए आप बच्चों ने अभी तक पूरी तैयारियां किया ही नहीं है, तो अंतिम सेवा के समय क्या अंतिम समय में क्या सेवा कर सकेंगे, इस प्रकार से बाबा ने उलह ना दिया था। तो अब बाबा वो अंतिम समय की सेवाएं सिखा रहे, इसका मतलब क्या हो गया, वो है ना गीत समझने वाले समझ गए और ना समझे वो अनाड़ी है, ऐसा समझ गए ना, तो इसलिए अंतिम समय की सेवाओं की रीति विधि वो बाबा सिखा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अंतिम समय दूर है या नजदीक है? क्या समझते हो? आज के ही अखबार में है, कोरिया वालों ने अपने मिसाइल्स के ऊपर एटम बम जो है, एटॉमिक एनर्जी के शस्त्र जो है वो अपने मिसाइल्स के ऊपर, इन सब के ऊपर वो फिट करने के लिए ऑर्डर दे दिया। और उसके सामने रशिया ने भी, अरे उसके सामने अमेरिका ने भी अपने सेना को ऑर्डर दे दिया कि हम भी अपने जो भी है मिसाइल आदि जो है उसके ऊपर एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एटम बम आदि का शस्त्र लगा दे। इस प्रकार से क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है वो मालूम नहीं है, परंतु इस प्रकार से अंतिम समय की सेवाओं की जरूरत क्या है? क्योंकि अंतिम समय, हम बाबा ने साफ कहा हुआ है, अंतिम समय क्या होगा? अचानक ही आएगा, मालूम है ना सबको। अंतिम समय पूछ करके नहीं आएगा, बताएंगे नहीं, बाबा भी बताएंगे नहीं, अंतिम समय अचानक ही आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, क्या कहा सुनिए। क्योंकि आजकल समय आगे बढ़ेगा, जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हालतों में भी टेंशन बढ़ेगा, हालतों के प्रमाण भी टेंशन बढ़ेगा। ये सिंपल वाक्य एक है, अंतिम समय के अंदर क्या हो जाएगा? समय आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? हालतों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा। बाबा इशारा दे सकते हैं, हमने देखा है कि बाबा त्रिकालदर्शी है, इसलिए बाबा पूरा है तो बताएंगे नहीं। एक बार बाबा से हमने पूछा था तो बाबा ने कहा था, बच्चे मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि रूपी जो ड्रामा जो है ना वो रियल है, रियल है, इसके लिए रियल की मर्यादा के बीच में रह करके मैं आप बच्चों को बता सकता हूँ, परंतु समझदार बच्चे जो होंगे ना वो मेरे इशारे को समझ जाएंगे। 63 के 64 की ये बात है, राजी माता के अनुभव में बाबा ने ये बताया था कि बच्चे ये ड्रामा रियल है, इसलिए मैं आपको ज्यादा भेद खोल करके एक और एक दो ऐसा करके नहीं बता सकता हूँ, पर मैं इशारा दे सकता हूँ, और इशारा दूंगा तो जो समझदार बच्चे होंगे ना वो समझ जाएंगे। तो कल बाबा ने जो इस प्रकार से कहा कि हालत क्या होगी, तो इसलिए हालतों के प्रमाण टेंशन बढ़ेगा, इसमें सब बातें समझ गए ना, तो आपके चेहरे उनों को खुश करेगा। ऐसी सेवा करने के लिए हर बच्चों को तैयारी करनी है, ये आप लोग, हम बच्चों को बाबा ने ऐसी कौन सी आपके चेहरे उनको खुश करे, ऐसे जिनके जीवन में हालतों के कारण टेंशन बढ़ गया होगा उनको खुश करने के लिए ऐसी सेवा की तैयारी करनी है। एक फोर्थ डायमेंशन ऑफ ईश्वरीय सेवा, एक तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये सब तो करते हैं, ये फोर्थ डायमेंशन ये है कि हमारे चेहरे के द्वारा हमको सेवा करनी है। अभी तक 3 डायमेंशन ऑफ ईश्वरीय सेवा करते थे, अब फोर्थ डायमेंशन, जैसे कंप्यूटर की दुनिया में भी है ना, अभी जब 3G का टेलीफोन था, अभी 4G आ गया है, और उसके बाद अभी नया नया निकला हुआ है अमेरिका आदि में 5G। इस प्रकार से बाबा ने 3rd डायमेंशन पूरा करके ईश्वरीय सेवा का 4th डायमेंशन शुरू किया हुआ है, और जो नई नई सेवाएं बाबा बताते हैं उसको करने के लिए तैयारी होनी चाहिए कि हम कैसे ऐसी सेवा कर सकते हैं। खुश रहना, खुशी बांटना कोई मासी का घर नहीं है, मैं आपको अनुभव से बताता हूँ। खुश रहना क्या होता है, हम सबके ऊपर ऐसे ही हम समझते हैं कि क्या होता है, हमारे गुजराती में कहा हुआ था कि मियाँ दुबले क्यों, तो सारे गांव की फिक्र, हम सबके ऊपर सारी दुनिया की फिक्र हो, ऐसे ही हमारे सबके मुख जो है ना पीले ही रहते, हर्षित रहते ही नहीं है। तो इसलिए हर्षित रहना ये भी एक कला है, 16 कला में ये भी है, खुश रहो जो बाबा ने कहा, हर्षित रहो, ये भी एक कला है। कोई भी बात आ जाए, गुजराती में कहते हैं हम बाप मरो या माँ मरो, हलवा खाओ, इस प्रकार से हमको कोई भी चीज आ जावे, कोई भी परिस्थिति आ जावे, हम खुश सदा रहे। खुशी हमारा खुद का निजी क्या के गहना है। और बाबा ने कहा आपको मालूम है ना आपका विशेष खजाना क्या है। अब ये खजाने को डेवलप करना है। हम जानते तो है हमारे पास तीन खजाने हैं, ज्ञान योग और धारणा। ज्ञान योग और धारणा ये तीन खजाने तो है। अब इन तीनों खजानों के द्वारा हमारे मुख के ऊपर ईश्वरीय ज्ञान की चमक, ईश्वरीय योग की चमक और ईश्वरीय धारणा की चमक कैसे आए, इसके लिए पुरुषार्थ करना है, वो सीखने का है। ये नई कला है, नई विधि है, और नई विधि को सीखना है कि ज्ञान का, योग का और धारणा का प्रभाव हमारे चेहरे के ऊपर कैसे आ जाए कि सामने वाला समझे ये ज्ञानी है, सामने वाला ये समझे ये योगी है, और सामने वाला ऐसा समझे ये धारणा युक्त है। फिर बाबा ने वही खजाने वाले की बात रिपीट किया कि विशेष खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, और फिर नई बात बताई। वासुदेवी जानकी ने भी हम सबको बताया। बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ खजाना, ऊपर ज्ञान योग धारणा की तो बात कही, पर सबसे श्रेष्ठ खजाना है संगम का समय। ये संगम का समय सर्वश्रेष्ठ खजाना है। मैं नहीं समझता हूं यहां कोई ऐसा बैठा हुआ होगा जिन्हों को ये ज्ञान मिला उसके पहले मालूम होगा कि अभी संगम का समय चल रहा है। कोई ऐसा बैठा है जिन्होंने ये ज्ञान नहीं सुना था, नहीं किसी के पास ज्ञान सुना, उसके पहले उनको मालूम पड़ा होगा कि ये संगम का समय चल रहा है। बाबा ने ही पहली बार बताया कि ये संगम का समय चल रहा है। 1937 में बाबा ने जब प्रवेश किया, दिव्य अवतरण किया, तो बाबा ने ही बताया। और इसलिए बाबा ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ खजाना है संगम का समय। आजकल समय में, आजकल के समय में स्वयं बाप, देखिए बाबा ने अपना परिचय ऐसा कभी नहीं कहा, बहुत कम बार सुनाया हुआ है कि आजकल के समय में स्वयं बाप, फिर अपना परिचय देते, बाप बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं, स्वयं बाप और वो बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं। आपको मालूम है ना, बाप शिक्षक और गुरु, और उसमें गुरु क्या है, गुरु खाली गति सदगति करने, गुरु माना ही परमधाम तक ले जाने की यात्रा के लिए निमित्त जो बनता है वो गुरु है, हमको वापस घर ले जाने वाला उसको गुरु कहते हैं। तो इसलिए बाप स्वयं बाप गुरु के संबंध में आए हुए हैं, और आज के समय में स्वयं बाप बच्चों को खजाने से संपन्न बना रहे हैं। तो बोलो बच्चे, समय से प्यार है ना, तो सभी चेक करो कि हमारे में सर्व खजाने जमा है। समय को देखते हुए अपने आप को चेक करना है कि हमारे में सब प्रकार के खजाने जमा है। क्यों क्यों? क्योंकि बाप समान सर्व बाप समान बाप जो है अपने समान जो है खजाने जो है वो सर्व खजाने बांट रहे हैं। बाबा खजाना बांट रहे हैं। परंतु गुजराती में एक कहावत है कि कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है और हम क्या करते हैं, मुख धुलाई करने के लिए चले जाते हैं। जिसको अंग्रेजी में बाबा ने ही मुरली में कहा हुआ है कि बाबा हर एक को आगे बढ़ने की समान अपॉर्चुनिटी तक देता हूं सबको। बाबा का सर्वश्रेष्ठ समाजवाद यही है कि बाबा सबको आगे बढ़ने की समान तक देते हैं। कहीं उसको उठा लेते हैं, अपना लेते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, कहीं जो है इग्नोर कर देते हैं। बेफिक्र बादशाह बनने के बदले में क्या होता है, बेपरवाह बादशाह बन जाते हैं। बात सिंपल है, हमको बेफिक्र बनना है या बेपरवाह? बेपरवाह बनेंगे तो क्या हो जाएगा, बाबा खजाना तो बांट रहे हैं परंतु हम स्वीकार नहीं कर सकते, कई गलतियां छोटी बड़ी होती ही रहती है। आपको मालूम है ना सर्व बड़े में बड़ी गलती कौन सी है शास्त्रों में, मालूम है? शास्त्रों में एक है बहुत बड़ी गलती, इनकी जैसी बड़ी गलती और किसी ने नहीं किया हुआ है, नहीं मालूम है। कुंभकर्ण जो है ना, उसको भगवान सामने ब्रह्मा जी आए और इन्होंने कहा अच्छा बच्चे वरदान मांग। कुंभकर्ण को बोलना था इंद्रासन, क्या बोल दिया? क्या निंद्रासन। इनकी इस जैसी बड़ी गलती, सारे शास्त्र आप खोल लो, सारे शास्त्र पढ़ लो, पर इस जैसी बड़ी गलती, कुंभकर्ण जैसी बड़ी गलती और किधर दिखाई पड़ी है? आपने सबने भक्ति तो किया है, जो भी यहाँ बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ भक्त बनकर के भक्ति करके इसके बाद ही यहाँ आए हुए हैं, सबको मालूम है ना कुंभकर्ण जैसी गलती किसी ने नहीं किया है। पर हमारे पास क्या होता है मैं आपको बताऊं, हमारे पास कहीं ऐसे बाबा के बच्चे हैं ना कि कुंभकर्ण के भी बाप जैसे हैं। कुंभकर्ण तो 6 मास में एक दिन जागता था, कुंभकर्ण तो 6 मास में एक दिन भी जागता था। हमारे पास कहीं ऐसे है ना, कहीं सालों तक नहीं जागते हैं, कई बार नहीं आते। कल एक भाई हमको मिला, मैं 8 साल के बाद आबू में आया, 8 साल के बाद आबू में आया, इसका मतलब क्या हो गया? 8 साल तक मतलब क्या हो गया? नहीं आ सका। हमने कहा भाई आना चाहिए, दादी जानकी तो हमेशा ही डबल विदेशी भाई बहनों को कहती है दादी जी कि सबको साल में एक बार तो आकर के यहाँ अपनी बैटरी चार्ज करनी ही चाहिए। आपको मालूम नहीं पड़ता होगा कि आपकी बैटरी कैसे चार्ज होती है, परंतु ये हकीकत है आपकी बैटरी चार्ज हो रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईश्वरीय करंट के आधार पर। इसे बाबा कहते हैं बोलो बच्चे समय से प्यार है ना, हाँ तो सभी चेक करो, हमारे में सर्व खजाने जमा हैं, हमारे में सर्व खजाने जमा हैं। और दूसरा क्या चेक करने को कहा है कि बाप समान हम भी सभी खजानों के अधिकारी बने हैं, बाप समान हम भी सभी खजानों के अधिकारी बने हैं। जो बने होंगे वो हाथ उठाने के लिए बाबा ने बात कही, कहीं सबने हाथ खड़ा किया, इसलिए क्या बाबा ने क्या किया, जिन बच्चों ने हाथ खड़ा किया है उनको खजाने की भरपूरता का बाबा बधाइयां दे रहे हैं। फिर और बात आई, बाबा ने कहा आज बहुत नए बच्चे भी आए हुए हैं, आचार्य तरफ से आए बाबा उन बच्चों के हरेक का स्वागत करते हैं, और जो भी नए भी आए हुए बाबा कहते हैं सब खुशी में भरपूर दिखाई दे रही है, और ऐसे ही सदा खुशी से भरपूर रहते रहो। फिर बाबा ने एक और सजेशन दिया कि कोई भी बात आवे, कोई भी प्रकार की बात आवे लेकिन बातें हमारे खजानों की खुशी नहीं ले जावे। खुशी का हमारा खुशी का चेहरा, 3 प्रकार के चेहरे बाबा ने कल दिखाए हैं। एक पहला बताया खुशी का चेहरा, खुशी का चेहरा नहीं होता है तो, दूसरा स्नेह का चेहरा, और तीसरा बाबा ने कहा प्रेम का चेहरा। खुशी का चेहरा, स्नेह का चेहरा और प्रेम का चेहरा। हमारे ज्ञान के अंदर बहुत हर एक बात की गहराई में गए हुए हैं। दादी जानकी का एक क्लास है साइलेंस और पीस के बीच में क्या फर्क है, दादी ने 1.5 घंटा उसके ऊपर बताया। सामान्य मनुष्य साइलेंस और पीस के बीच में क्या फर्क है वो नहीं बता सकेगा। आपको अभी आत्मा में किसी को कहे 2 मिनट 5 मिनट बोल सके, दादी ने बराबर 1.5 घंटा उसके ऊपर समझाया साइलेंस क्या है पीस क्या है। इस प्रकार से दादी ने यह भी बताया हुआ है स्नेह क्या है और प्रेम क्या है। हम कई बात समझते नहीं है ना, इसलिए क्या करते हैं सबको एक समान चला लेते हैं कि नहीं। बाबा ने कल भी कहा आपका खुशी का चेहरा, स्नेह का चेहरा और प्रेम का चेहरा, जो बाबा भी उसके बीच में डिस्टिंक्शन कर रहा है। हाँ तो ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप सोचना इसके ऊपर कि खुशी का चेहरा क्या है, स्नेह का चेहरा क्या है और प्रेम का चेहरा क्या है। सोचना इसके ऊपर इन तीनों में फर्क है, यानी खुशी भी वही है, स्नेह भी वही है, प्रेम भी वही है, हाँ सब हाँ एक समान है क्या? तो देखो बाबा ने क्या कहा। और फिर बाबा ने सवाल पूछा कि ऐसे रह सकते हो? फिर बाबा ने क्या कहा, ठीक है बहुत सुंदर एक बात कही, बीती सो बीती। बाबा ने कहा जो अभी तक बीता और उसको बीती को बीती कर दो, भूल जाओ। बाबा ये बहुत कठिन बात है, बीती को बीती करना बहुत कठिन बात है, बीती को हम अपने साथ में लेके चलते ही है। इसलिए बीती को क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं ना, भूतकाल माना बीती बातें भूत बन करके हमको परेशान करती है। दुनिया में हम किसी को पूछे आप भूत को मानते हो, तो कहते नहीं हम नहीं मानते, तो फिर हम कहते हैं तो फिर बीती बातों का भूत को साथ में लेकर के क्यों घूमते हो? परंतु क्या करें, बहुत कठिन बात है भूतकाल को भूलना, बहुत कठिन बात है। और इसलिए क्या होता है, औरों को उनकी भूतकाल की बातों के आधार पर उसको हम जज करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं किसी को इस प्रकार से उनकी बीती हुई भूतकाल की गलतियों के आधार पर उसको जज करने का प्रयत्न नहीं कीजिए, क्योंकि हरेक पुरुषार्थी है, हरेक आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहा है। तो जब हरेक आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो उसको उसकी बीती हुई भूतकाल की बातों के आधार पर उसको जज करके उनको परेशान क्यों करते हो? इसलिए भूतकाल के आधार पर बीती सो बीती हम अपने लिए भी करें और सामने वालों के भी लिए कहें कि बीती सो बीती उसने जो भी गलती किया, गलतियों को माफ करना ये बहुत बड़ी बात है। बड़े जिसके पास बड़ा दिल होगा ना, वो ही अन्यों की गलतियों को माफ कर सकता है। बाकी माफ करना और कराना बहुत कठिन बात है, हम सजा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ने बहुत एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि बच्चों को मैंने जो कहा है वो बच्चे नहीं करते हैं, और जो नहीं कहा है वो करते हैं। एक अव्यक्त मुरली है, बच्चों को मैंने जो कहा है वो बच्चे नहीं करते, और जो नहीं कहा है वो करते हैं। क्या मैंने बच्चों को कहा है आप बच्चे आनंद का सागर, मास्टर आनंद का सागर हो, मास्टर प्रेम का सागर हो, मास्टर स्नेह का सागर हो, मास्टर शक्ति का सागर हो, ये सारा मास्टर स्नेह शक्ति आदि का सागर बनने के लिए कहा है, वो बच्चे नहीं बनते हैं। और मैंने बच्चों को ये नहीं कहा है कि आप मास्टर धर्मराज बनो, आप बच्चे मास्टर धर्मराज बनो नहीं कहा है। और सब बच्चे मास्टर धर्मराज बनकर के औरों के बारे में जजमेंट देते कि वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बनकर के मास्टर धर्मराज बन जाते हैं। वो मैंने ना कहा है कि आप बच्चे मास्टर धर्मराज नहीं बन सकते, वो बनते हैं, और जो मैंने कहा है वो नहीं बनते हैं। ये बाबा ने हम बच्चों के लिए फरियाद किया हुआ है। अब आप अपने निजी जीवन से देख लीजिए कि बाबा की फरियाद कहाँ तक हमारे साथ एप्लीकेबल है। बाबा ने कहा है जो मैंने कहा है वो नहीं करते, और जो नहीं कहा है वो करते हैं, इसका नाम है बच्चे। विचित्र बातें हैं परंतु हकीकत है। बीती सो बीती करके अभी सदा ऐसा रहना है, इस बात के लिए जो करने का तैयार हो उसको हाथ उठाने की बात कह। मैं समझता हूँ आप सबने हाथ उठाया ही होगा। फिर बाबा ने क्या किया, कभी भी कोई बात आए ऐसे ही चेहरा रहेगा, कोई भी बात आए ऐसा खुशनुमा खुशी वाला चेहरा रहेगा। इनको लिए बाबा ने क्या कहा, कान ढिलाने के लिए कहा। दादी ने भी जानकी में दादी जानकी ने भी कान ढिला करके दिखाया, और इसके कारण ऐसा हमारा खुशी का चेहरा देखेंगे लोग क्या कहेंगे, ये कौन आया है? आपको देख करके आधे खुश तो वह और जवाही हो जाएंगे, उनकी तपस्या उनके ऊपर बोझ आदि जो भी सही वो सब दूर हो सकता है। फिर बाबा ने यहाँ ऐसा कर करके टेम्पररीली मुरली समाप्त किया। इतने में 8:10 हुई, माना 7:40 से 8:10-30 बाबा ये बातें कही। फिर बाबा ने कहा आज कौन सा जोन आया हुआ है, जिस पर मुन्नी बहन ने बताया क्या इंदौर जोन आया हुआ है, 8,500 बहन भाई आए हैं। बाबा ने देख करके कहा अरे इतने सभा में इतने आधे से ज्यादा तो इंदौर के ही है। फिर बाबा निर्णयों के समय पर भी हाथ उठवाया। निर्भय भाई ने हमको कहा कि रमेश भाई 80% सभा में नए लोग आए हुए, तो मैंने मन में कहा कि 80% नए लोग आए, इसके लिए एक समस्या होने वाली है, मीठी समस्या। एक कड़वी समस्या होती है, एक मीठी समस्या। ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, हमारे पास वो मीठी समस्या आती है। मैं बताऊं मीठी समस्या क्या है? स्वीट प्रॉब्लम, एक सावर प्रॉब्लम, कड़वा मीठा, एक कड़वा प्रॉब्लम है और एक मीठा प्रॉब्लम है। मीठी समस्या ये है कि आजकल टीवी और अन्य अनेक प्रकार की सेवाओं के कारण सभी सेवा केंद्रों पर आने वाले बहन भाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप सब जहां भी जिस सेंटर से आए, सभी सेंटरों पर यह बात हकीकत है, संख्या बढ़ती जा रही है। फिर हमारे पास प्रश्न आता है, हम कहते हैं कि चलो एक शिफ्ट के बदले में दो शिफ्ट कर लो, फिर और भी संख्या बढ़ती जाती है, तो कई सेवा केंद्रों के ऊपर तीन तीन शिफ्ट चलती है, तीन शिफ्ट, 5 से 6, 6.5 से 7.5 और 8 से 9, इस प्रकार से तीन शिफ्ट चलती है कई सेंटरों के ऊपर। फिर भी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है? वो मत्स्य पुराण सबने बढ़ा होगा, मत्स्य अवतार, एक छोटी मछली थी सन्यासी के हाथ में आ गई, तो उन्होंने बचाने के लिए इसमें कमंडल में डाल दी, घर में लेके गए, आश्रम में लेके, तो मछली बड़ी हो गई, उसने तालाब में डाला, तालाब से बड़ी हो गई, फिर उसको नदी में डाली, नदी में बड़ी हो गई, समुद्र में डाली। इस प्रकार से मत्स्य अवतार का है, हमारे यहाँ भी यही है, संख्या जो है ना मत्स्य अवतार के माफिक बढ़ती जाती है। हमारे पास कम से कम 40 से 50 सेवा केंद्र ऐसे हैं, वो कहते हैं कि रमेश भाई हमको पुराना सेंटर का मकान को छोड़ करके नया मकान बड़ा हॉल वाला लेने की परमिशन दो। मैं इसको कहता हूँ मीठी समस्या। अच्छा है ना, संख्या बढ़े तो नुकसान है क्या? कोई समझे कि संख्या बढ़ने से नुकसान हो रहा है तो हाथ खड़ा करे। संख्या बढ़े अच्छा है, पुराना मकान छोटा पड़ता है तो नया मकान बने, बड़ा मकान बने, अच्छी बात है ना। इसको मैं क्या कहता हूँ, मीठी समस्या। 80% नए समस्या बहन भाई थे इंदौर जोन के अंदर, यहाँ जो भी कल सारी सभा के बीच में थे, तो जरूर क्या होगा, हमारी ये मीठी समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, और बढ़ती रहे। आप सब क्या चाहते हो? ये मीठी समस्या बढ़ती रहे, ऐसा चाहते हो ना? जो चाहे कि नहीं नहीं बढ़नी चाहिए, संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, जितना है इतना बस काफी है, वो हाथ खड़ा करे। तो ये मीठी समस्या बढ़ती रहेंगी और अच्छी बात है सभी सेवा। अभी ये भी देखो ना, ये हॉल जो है छोटा पड़ता है, कई लोग कहते हैं अभी आगे क्या, अभी आगे क्या, मैं हम सबको कहते हैं आगे बाबा क्या दिखाता है हम देखेंगे। अब सबसे पहले पांडव भवन में ईश्वरदादी की ऑफिस जो थी उसके बाहर वहाँ बैठते थे, उसके बाद हिस्ट्री हॉल बना 61 में, उसके बाद मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद ओम शांति भवन बना, इंटरनेशनल योगा हॉल बना, इंटरनेशनल पीस हॉल बना, उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, उसके बाद शांतिवन बना, शांतिवन में भी ये हॉल बना। अभी ये भी छोटा पड़ रहा है तो फिर और बढ़ेगा, जैसे यो यहाँ होता है ना वही सभी सेवा केंद्रों पर हो रहा है, वो अच्छी बात है ना। क्यों नहीं अच्छी होनी चाहिए? हमारे एक सेवा केंद्र ने, आपको मालूम नहीं होगा, एक सेवा केंद्र ने 7.25 करोड़ खर्च करके एक मकान खरीद किया। कारण यही है कि संख्या बहुत बढ़ गई है, अच्छी बात है, ताली बजाइए। मैं चाहता हूं कि सबके सेंटर्स के मकान छोटे पड़े। आप सब इच्छा रखते हो और सबको बड़े नए मकान लेने की जरूरत पड़े, अच्छी बात है ना। संख्या बढ़ती रहे तो बाबा का दैवी परिवार बढ़ता रहे तो अच्छी बात है ना, और आपके यहाँ भी बढ़ेगा तो क्या क्या हो जाएगा देखेंगे हम। पर तो कल हमने देखा, निर्भय भाई ने जब मुझे कहा रमेश जी, हम बाजू बाजू में बैठे कि 80% नए थे, तब हमने कहा कि दिन प्रतिदिन जो है वो मीठी समस्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जानी चाहिए। ठीक है ना, आप सबकी राय है ना कि ये संख्या बढ़ती रहे। बाबा ने सभी उनको विंडो जोन वालों को भी कहा, हाँ प्रॉमिस दिलाया। हाँ क्या प्रॉमिस दिलाया, कैसा प्रॉमिस दे कि सदा ऐसा खुश मिजाज चेहरा सदा रहे। फिर बाबा ने कंपैरिजन कराई, मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुरझाया हुआ चेहरा। कल दादी ने सुबह कहा ना, एक उसमें ऊपर होता है उसमें नीचे होता है, उसमें इतना फर्क में फर्क बदली हो जाता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुरझाया हुआ चेहरा। हमने ज्ञानामृत में एक आर्टिकल लिखा था 77 में, दादी जी और हम जो है विदेश सेवा पर गए हुए थे 77 में, करीब 14 जुलाई थी, हम न्यूयॉर्क से निकले लंदन जाने के लिए। लंदन पहुंचे तो जहां रिसीव करने के लिए आए थे, इन्होंने कहा कि आपका हवाई जहाज लास्ट निकला, उसके बाद बिजली जो है ऊपर से गिरी थी और सारे न्यूयॉर्क के अंदर अंधेरा हो गया था। तो फिर हमने उस दिन वहां का अखबार पढ़ा तो बताया, देखिए हम समझते हैं कि अमेरिका की संस्कृति है और अमेरिका के लोग सब सभ्य है, ये गलत है। उसका हमने अनुभव किया, वो एक शब्द चित्र हमने ज्ञानामृत में लिखा है, दो शब्द चित्र, एक न्यूयॉर्क का और एक कानपुर का। दोनों का शब्द चित्र लिखा कि न्यूयॉर्क के अंदर बिजली गिरी, अंधेरा हो गया मैनहट्टन ब्रॉन्क्स आदि में, और उसके कारण एक रात में 60 लाख डॉलर की चीजों स्टोर आदि के अंदर चोरी हुई और लोगों ने लूटपाट किया, खत्म कर दिया माल का, क्योंकि वहां सबका कनेक्शन होता है पुलिस स्टेशन के साथ, पर बिजली नहीं थी। हाँ तो आप उसका ग्लास तोड़ दो, शीशा तोड़ दो, जो भी करो कुछ होने वाला नहीं। 60 लाख डॉलर की चोरी अमेरिका के सुसंस्कृत दैवी या तो आज की दुनिया के तमोप्रधान दुनिया के अच्छे में अच्छे गिनाने वाले लोगों ने चोरी किया, 60 लाख डॉलर की एक रात में अंधेरे में। वही हम कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कितना भी करो सीधी नहीं होता, टेढ़ी ही रह जाएगी, इसमें कितना भी अच्छा करो। हाँ अमेरिका के लोग ऐसा ही रहे। उसकी भेंट में दादी जी और हम जब हिंदुस्तान में आए तो सभी सेवा केंद्रों पर गए, हम कानपुर में गए। कानपुर में गए तो उस दिन उस रात को सारी रात जो है ना अंधेरा ही अंधेरा था, सारी रात अंधेरा ही अंधेरा था। तो हमने दूसरे दिन सोचा, मैंने दादी को कहा आज का अखबार हमको पढ़ना पड़ेगा। कहा क्यों? मैंने कहा दादी हम जो गए थे लंदन में तब पहुंचे थे तो बताया था न्यूयॉर्क में 60 लाख डॉलर की चीजों की चोरी दुकानों में से सब में से हो गई थी। अब कल कानपुर में भी सारी रात अंधेरा था, कितने हजारों डॉलर की या रुपये की चोरी हो गई हम देखे। और हमने पढ़ा दूसरे दिन के अखबार, उसमें सारी रात में एक रुपये की भी चोरी कानपुर में नहीं हुई थी। तो हमने वो दो शब्द चित्र आर्टिकल के अंदर लिखा था कि कहाँ की संस्कृति श्रेष्ठ, कानपुर की संस्कृति श्रेष्ठ या अमेरिका की न्यूयॉर्क की संस्कृति श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से कल बाबा ने दो संस्कृति, इस प्रकार से दो चेहरों की बात कही। हाँ दो बातें कही, एक तो मुरझाया हुआ चेहरा और दूसरा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो क्या अच्छा लगेगा बाबा ने, और बाबा ने खुद ने जवाब दे दिया, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अच्छे लगेगा। तो आज से सभी बच्चे, और बाबा ने सभी बच्चे कर सिर्फ ये जोर नहीं, हाँ परंतु सभी बच्चे अपने दिल से प्रॉमिस करो कि हम सदा खुश रहेंगे और सभी को खुश करेंगे। ये प्रॉमिस सबसे बाबा ने लिया हुआ है। दादी जानकी ने प्रॉमिस शब्द का आज हिंदी किया, मालूम है ना? आज दादी जानकी ने प्रॉमिस शब्द का हिंदी किया, प्रतिज्ञा सुना है ना सबने, दादी जानकी का क्लास तो सुना ना सुबह। हाँ प्रॉमिस शब्द का अर्थ क्या, प्रतिज्ञा। तो बाबा ने क्या कल हम सबसे प्रतिज्ञा कराई कि हम सदा खुश रहेंगे और सबको खुश करेंगे, ये प्रतिज्ञा सबसे कराई, क्योंकि खुशी जैसा खुराक नहीं। और बाबा ने कहा कि मैंने खुशी के बारे में अनेक बार उसकी कमाल की बातें मुरली में सुनाई हुई है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल एक भी दिया कि बाकी कोई चीज जो बांटेंगे तो कम होती है, खुशी ऐसी है जितनी बांटेंगे इतनी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने ये स्लोगन दिया, कल बाबा ने एक स्लोगन दिया, आज जानकी जादी ने भी बहुत से स्लोगन सुनाए थे मुरली में, इसमें कल ये है। यह लिख दो कि खुश, क्या स्लोगन लिखने के लिए कहा, खुश रहना है और खुश करना है, खुश रहना है और खुश करना है। बाबा ने पूछा ये स्लोगन पसंद है, तो आप सबने हाथ तो खड़ा किया होगा ना, तो बाबा ने इसलिए कहा कि आप इतने खुश विचार बच्चों को देख कितने खुश हो जाएंगे, इसलिए पक्का प्रॉमिस करो। हम बाबा फिर प्रॉमिस के आगे एक शब्द और डाल दिया, पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस माना एकदम, जो वचन जो है हमारा, जो प्रतिज्ञा जो है एकदम पक्की प्रतिज्ञा करो कि खुश रहेंगे और खुशी बांटेंगे इस प्रकार से। और हमारी कोई भी बात आएंगी तो क्या होगा, खुशी को जाने नहीं देंगे, खुशी को जाने नहीं देंगे। और उसके बाद बाबा ने एक प्रश्न पूछ लिया, अब हम किसी का उसके ऊपर ध्यान नहीं गया है, मैंने बराबर दोबारा पढ़ करके उसके ऊपर अंडरलाइन किया, हम खुशी जाने नहीं देंगे, और खुशी ना जाने नहीं देंगे इसके लिए उसकी ताकत है कि खुशी को हम जाने नहीं देंगे, इतनी ताकत है। बाबा ने सबको प्रश्न पूछा है कल, खुशी हमारी कोई भी बात आ जाए जाने नहीं देंगे, इस प्रकार से जाने नहीं देंगे उसकी ताकत है, बाबा ने सवाल पूछा हुआ है। और जिनमें ताकत है उसको बाबा ने कहा हाथ उठाओ, इस प्रकार से हाथ रखा। फिर बाबा ने क्या किया, हिम्मत रखी है तो आपकी हिम्मत, कईयों ने हिम्मत रखी, कईयों ने सोचा क्या करेंगे, हिम्मत रखने, हिम्मत कैसे रखेंगे, बाबा के सामने हाथ खड़ा करे और नहीं होगा तो। इसलिए बाबा ने हिम्मत का बल दिया कि जिन्होंने भी हिम्मत दिया बाप की मदद साथ में उनके पास रहेंगी, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। पर मैं हमेशा ही कहता हूं कि एक स्लोगन हमारे जैसे पुरुषार्थी बच्चों ने गलत कर दिया है, हम अभी कहते हैं कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। आप सबको क्या पसंद है, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप वो स्लोगन पसंद है, या हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे, क्या पसंद है? मैं समझता हूँ पहला ही पसंद होगा कि हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप, ये होना चाहिए। परंतु दुनिया में हम रहते हैं, हमने देखा है कि बच्चे भी बाबा के बच्चे होते हुए भी बाबा को कहें बाबा आप करो, बाबा आप करो, इस प्रकार से करते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा आज जैसी शक्ल सदा ही रहे इस प्रकार से करो। और बाबा ने इसलिए फिर से कहा सदा खुश रहो और खुशी बांटेंगे। और जिनको ये मंजूर हो उसको बाबा ने कहा दो दो हाथ खड़ा करो, दो दो हाथ खड़ा करो। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा यही चाहते हैं कि एक एक को कोई भी दूर से देखे तो खुद भी मुस्कुराए, आपके खुशी की शक्ल देखकर खुद भी खुश हो जावे, यह सेवा करेंगे, आपकी शक्ल देख करके वो भी खुश हो जाए। बाबा ने कहा ये सेवा करेंगे, अर्थात खुशी के द्वारा, चेहरे के खुशी के द्वारा सेवा करने की तरीका जो है बाबा ने कल बताया, पिछले तीन मुरली से कह रहे हैं, ये चेहरा और चेहरे के द्वारा खुशी का, चेहरे के द्वारा सेवा करने का तरीका बाबा कहते हैं ये करेंगे। अच्छा, उसके लिए भी बाबा ने हाथ खड़ा किया है। फिर बाबा ने परीक्षा लिया, बाबा कहते हैं आज से सभी स्थानों में अचानक कोई भी आए बाप दादा भी भेजेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का ऐसा चेहरा देखना नहीं चाहते, बाप भी परीक्षा लेने के लिए किसी को भेजेंगे। इसके ऊपर बाबा के साथ हमारी बहुत डिबेट हुई थी, साकार बाबा के साथ। मैं बाबा को कहता था बाबा माया तो इतनी परीक्षा लेता है, लेती है माया, आप क्यों परीक्षा लेते हो, आप तो हमारे बाप हो, हाँ दुनिया में कोई ऐसा देखा बाप जो बच्चों की परीक्षा लेता हो? आप क्यों परीक्षा लेते हो? तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया था साकार बाबा का, वो मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है। बाबा ने कहा कि बच्चे माताओं को ज्यादा मालूम होगा, बहनों को माताओं को। बाबा ने कहा कि आप बाजार में मटका खरीदने के लिए जाते हो ना, तो उसको भी टक-टक करके देखते हो कि मटके से पानी का लीकेज तो नहीं है। मटका लेते हो तो ऐसा देखते हो ना, कोई भी चीज लेते हो तो पानी का उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, वो तो देखते हो ना। बाबा ने कहा एक सामान्य मटका लेने के लिए भी आप परीक्षा करते हो कि लीकेज ना हो, तो मैं क्यों नहीं आपकी परीक्षा करूं? क्योंकि मुझे 2500 वर्ष के लिए आपके हाथों में नई दुनिया का कारोबार देना है, तो मैं क्यों नहीं आपकी परीक्षा लूं? आपने समझा? बाबा ने कहा मैं क्यों नहीं परीक्षा लूं, मैं भी लूंगा। मैंने कहा बाबा आपकी परीक्षा बहुत कड़ी होती है, आपकी परीक्षा बहुत कड़ी होती है। और बाबा ने कहा भी है, बाबा ने साकार बाबा की मूर्ति में कहा हुआ है, अंतिम समय में 1 सेकंड की परीक्षा होगी, 1 सेकंड की परीक्षा होगी, और 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास होगा वो बिंदीधारी बनेगा, और 1 सेकंड की परीक्षा में जो फेल होगा वो चिंदीधारी बनेगा। ये बाबा ने कहा। तो मुरली पूरी हुई नहीं तो मैं बाबा के पास गया, बाबा को कहा बाबा ये बिंदी और चिंदी क्या है, हमें तो समझ में नहीं आता है, आपको किसी को मालूम है बिंदी किसको कहते हैं, चिंदी किसको कहते हैं? बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, बहनों को मालूम होगा, बाकी भाइयों को मालूम नहीं होगा, बहुत कम भाइयों को मालूम होगा। बाबा ने कहा तुमने जो झाड़ कल्प वृक्ष जो है वो बराबर स्टडी नहीं किया है। मैंने कहा हमने किया है। बाबा ने कहा तुमने स्टडी किया होता तो ये प्रश्न तुम नहीं पूछता। मैंने कहा क्या? बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का उसमें जो चित्र है ना, उसके अंदर लक्ष्मी को इधर तिलक है, वो बिंदीधारी है, और सीता जो है ना उसके ऊपर यह बार बार में रिवाज है चिंदीधारी, या वो गोल मटका जैसा कुछ होता है छोटा सा, वो पहनती है माता है। और इस प्रकार से बाबा ने कहा सीता के, आप फिर से जिन्होंने पुराना कल्पवृक्ष का चित्र देखा होगा उसको मालूम होगा, सीता को चिंदीधारी बनाया है, लक्ष्मी को बिंदीधारी बनाया है। तो वो सीता चिंदीधारी हो गई माना त्रेता योगी हो गए, माना 1 सेकंड की परीक्षा में जो पास हो गए वो सत्ययोगी बादशाही लेने के लिए अधिकारी बनेंगे, और 1 सेकंड की अंतिम परीक्षा में जो फेल होंगे वो चिंदीधारी बनेंगे। अभी आपको हमको सबको नक्की करना है, 1 सेकंड की परीक्षा, 1 सेकंड की परीक्षा माना 1250 वर्ष का हमारा सौभाग्य लूट खत्म हो जाएगा। मंजूर है? मंजूर है? 1250 वर्ष का खजाना हमारा गुम हो जाए, प्रायलोप हो जाए। इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करें कि हम अंतिम 1 सेकंड के परीक्षा, बाबा ने पेपर तो पहले से ही दे दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, वो पहले से ही दे दिया है, परंतु देते देने के बाद भी क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है, क्या होगा कब होगा, अचानक परीक्षाएं आएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा, मैं बाबा ने कल भी 2 बार कह दिया कि ऐसे मैं आपके सेंटरों के ऊपर आपके पास आपके जीवन में ऐसे भेज दूंगा आपकी परीक्षा के लिए, तो संभालना। सबको मैं कह रहा हूं बाबा की तरफ से, हाँ मेरी तरफ से भी, कि बाबा ऐसी आपकी परीक्षा लेने वाला है। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि कहीं कहते बाबा नहीं हमारे सामने परीक्षा नहीं आवे, बाबा ने कहा आएंगी, क्योंकि रुस्तम के सामने तो माया रुस्तम बनकर के आएंगे, ये भी बाबा ने कहा हुआ है। तो इसलिए जितना ऊंचा पद चाहिए इतना ही माया भी बड़ी पहलवानी से आधार से हमारे सामने आने वाली है, और जो परीक्षा नहीं स्वीकार करेंगे वो क्या होगा आप जानते हो, मैं नहीं कहता हूं। फिर बाप दादा भेजेंगे, फिर बाबा ने बाप को बाप दादा को खुश करना है ना, फिर बाबा ने कहा हर एक सेंटर पर, आप हर एक सेंटर से यहाँ आए हुए हैं इसलिए हर एक सेंटर वालों को ये कहा है, हर एक सेंटर अपने साथियों को चेक करना, मिनट याद करेंगे बाबा।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है।
बाबा ने कहा कहा क्योंकि सभी स्थानों में अचानक कोई भी आए बाप दादा भेजेंगे, तो इस प्रकार से बाबा परीक्षा लेने वाले, इसलिए कोई भी परीक्षा आवे समझ लेना ये शायद बाबा के द्वारा भेजी हुई परीक्षा भी होगी। और लक्ष्य क्या रखेंगे उस परीक्षा में पास होना है। दादी गुलजार दादी जब रशिया में गए थे तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें एक अखबार वाले ने गुलजार दादी को पूछा कि आपको आपके सामने समस्या आती है तो आप क्या करते हो। बहुत सुंदर गुलजार दादी ने जवाब दिया, हम समस्या को समस्या समझते ही नहीं है, हम समस्या को परीक्षा समझते हैं। और होशियार विद्यार्थी समझता है कि परीक्षा में पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऊपर के डिवीजन में जाएंगे, इसलिए परीक्षा हमको आगे बढ़ाने के लिए आई हुई है। इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हमको हमारे सामने परीक्षा है, इसलिए परीक्षा से हम कभी भी समस्या से हम कभी भी डरते नहीं है। हाँ, जो ऐसे बाबा की परीक्षाओं के समय डरेगा वो हाथ खड़ा करे। हाँ, ऐसा बाबा परीक्षा लेगा, बाबा ने कहा अचानक भेजेंगा। हाँ, ऐसी बाबा की आई हुई बाबा के द्वारा भेजी हुई परीक्षा को देख करके जो डरने वाला वो अभी से हाथ खड़ा करे, तो बाबा को हम कह देंगे बाबा इनके पास उनकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से ही हथियार डाल दिए हैं। है कोई है? कोई नहीं है तो संभालना अभी। हाँ, मैंने सभी आप सबके सामने बाबा की तरफ से पूछ लिया। हाँ, तो आप सबने कहा कि भले आने दो, ऐसा ही है ना, परीक्षा आने दो, हम फेस करेंगे, हम पास हो गए। तो बाबा भी सुन रहा है और माया भी सुन रही है, संभालना, दोनों सुन रहे हैं। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा है कि माया मेरी बच्ची है। एक भाई ने मुझे कहा कि बाबा की माया बच्ची है तो हमारी क्या हो गई, मैंने कहा हमारी बहन हो गई। हमारे बाबा ने कहा अपने साथियों को चेक करना, कहना नहीं कुछ क्यों हुआ क्या हुआ, लेकिन अपनी शक्ल से ऐसे प्यार करना जो सामने वाला ऐसा अच्छा हो जाए, चुप हो जाए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, औरों की परीक्षा करते हैं, औरों को देखते रहते हैं। बाबा ने कहा आप औरों को मत देखो, ऐसा नहीं करो। इसलिए क्या ऐसी सेवा करेंगे जो खुद खुश रहेंगे और औरों को आप समान बनाएंगे। और फिर बाबा ने फिर दोबारा कहा कोई भी अचानक कभी भी किसी भी सेंटर पर आए तो ऐसा अनुभव करे कि हम खुशी के स्थान पर आए हुए हैं। वो तो सेंटर की बात हुई, उसी प्रकार से क्या होगा, हम सब अपने घरों में रहने वाले हैं ना। हम बाबा ने तो सेंटर तक की बात की, हम क्या कि मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ, हम सबके घरों में हम रहने वाले, हमारे घर में भी कोई ऐसी अचानक की बात हो जाए तो ऐसा ही समझना है कि बाबा के द्वारा भेजी हुई ये परीक्षा है। और इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए भी हमें 100% सफल होना ही है, ठीक है ना। सभी जो घर में रहने वाले यहाँ भाई बहन जो भी बैठे वो ऐसा ही समझते हैं ना, देखना। फिर बाबा ने कहा हाँ तो अभी बाप दादा अचानक कोई को भी भेजेगा गुप्त, वो भेजेंगे उसको कैसे भेजेंगे गुप्त, देखेंगे क्या आप सभी बच्चे बड़े बाप के बच्चे बन करके उसको फेस करते हो। और फिर जो पास होंगे उसके लिए क्या कहेंगे, बाबा ने कहा है ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं और दिल से बधाई दे रहे हैं और क्या आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा खुश आबाद रहो। फिर बाबा ने क्या कि आजकल नए नए बहुत आए हुए, नए के लिए बात बाबा ने बताई और नए को भी बाबा ने चैलेंज दिया कि समय से पहले आ गए अच्छी बात है, कमाल करके दिखाना। फिर कुमारियां की बात थी, 150 कुमारियां आई हुई थी, उसकी बात थी। आज कुमारियों का शाम को 6:30 बजे फंक्शन है, आप सबको आने का निमंत्रण है, मैं भी आपको कुमारियों के तरफ से निमंत्रण दे देता हूँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम करने वाले हैं, आपको लगेगा कि हमारा रवि परिवार भी बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं। और आज का भी ये मेरा क्लास पूरा हो जाएगा ना, इसके बाद एक भाई यहाँ आने वाला है, वो है डॉक्टर केजी राजू श्रीनिवास अर्थात गजल सम्राट श्रीनिवास, वो आकर के एक गजल आपके सामने पेश करने वाला है, सब बैठे रहना। गजल, गजल की बहुत दुनिया में महिमा है, तो इसलिए गजल सम्राट आने वाला है यहाँ पर, बहुत करके आएगा, अभी उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। इसके लिए कहा, उसको बाबा ने हिम्मत दिया है, कभी घबराना नहीं, मेरा बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाए, परंतु एक कंडीशन है, मेरा बाबा दिल से कहना, पॉलिसी के लिए नहीं, प्रिंसिपल के लिए भी नहीं, दिल से कहना, जिगरी कहना, तो बाबा आ ही जाएगा। फिर 8:36 पर बाबा ने शुरू किया कि ये इस सीजन की लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी सीजन के लिए दो जिम्मेदारियां दिया है, एक तो अपने अपने सेवा के स्थानों को सदा शुभ भावना शुभ कामना से निर्विघ्न बनाना, मैं उसमें ऐड कर रहा हूं अपने अपने सेवा स्थान के साथ साथ अपने घर को भी सदा शुभ भावना शुभ कामना से सदा निर्विघ्न बनाना, ये हकीकत है ना, सिर्फ सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाएंगे और अपने घर के अंदर रामायण महाभारत चलता रहे वो ठीक है क्या? जो ऐसा समझता है सेवा केंद्रों को निर्विघ्न बनाएंगे और हमारे घर में रामायण और महाभारत रोज चलता रहे वो हाथ खड़ा करे, कोई नहीं है, देखो कोई है? इसलिए हमारे घर में भी जैसे सेवा केंद्रों के ऊपर, हम तो घर में ही रहते हैं, सेवा के सेंटर पर 1-2 घंटे 4 घंटा जितना भी जाते होंगे, बाकी का हमारे घर में ही, जहां हम रहते हैं वो घर, और जहां हमारा कार्य क्षेत्र जो है, जहां हम काम धंधा करते हैं व्यापार करते हैं जो भी करते हैं, सभी को निर्विघ्न बनाना है। और बाबा ने स्लोगन दिया, स्वयं निर्विघ्न रहना और सर्व को निर्विघ्न बनाना, तो बाबा ने मंजूर है उसके लिए हाथ खड़ा करवाया। फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया, बच्चों को दुआएं भी देते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि अमर भव, वो अमर भव का आशीर्वाद किसको मिलेगा, जो इस प्रकार से अपने सेवा स्थान को अपने घर बार आदि को जो भी है उसको निर्विघ्न बनाएगा शुभ कामना और शुभ भावना के आधार पर। फिर दूसरी सीजन के लिए दूसरी बात बताई, बाप दादा का यही संकल्प है कि हर एक बच्चा, ये दूसरी बात है, हर एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है, जो विशेष कमजोरी है आप सब जानते हो, तो अपनी कमजोरी जानते हो तो अभी अगली सीजन की शुरुआत से पहले अपनी कमजोरियां जो भी है उसको समाप्त करके आना। पहली बात, अपना सेवा स्थान या घर में रहने का जो भी स्थान है उसको शुभ कामना शुभ भावना के आधार पर निर्विघ्न बनाना, और दूसरा अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो भी कमजोरियां है उस कमजोरियों के आधार पर उसको कमजोरियों को समाप्त करके आना। कमजोरी किस प्रकार की हो सकती है वो बाबा ने बताया, चाहे व्यस्त संकल्प हो चाहे क्रोध हो, छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग कर देता है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि क्रोध का संस्कार मैंने कैसे जीता, मैं आपको बताऊं। मेरा एक क्लाइंट था ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक क्लाइंट के पास गया था, मैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को कहा कि आपके चीफ अकाउंटेंट ने ये थोड़ी सी गलती की हुई है, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने चीफ अकाउंटेंट को बुलाया और उसके ऊपर बहुत क्रोध किया, उसको इतना क्रोध किया, इतना शर्मिंदा किया, मुझे भी लगा कि इतनी छोटी बात के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपने चीफ अकाउंटेंट के ऊपर इतना गुस्सा क्यों करता है। तो जब समाप्त हुआ तो फिर मैं वो चीफ अकाउंटेंट जहां बैठा था मैं वहां गया, तो मैंने उनको कहा भाई साहब सॉरी, मेरे कारण आपके मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपके ऊपर क्रोध किया। तो उसने कहा कि रमेश भाई कुछ नहीं है, मुझे वो कितना भी क्रोध करे इसके मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना भी क्रोध करे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा ये तो इसके बाद बहुत अच्छी युक्ति है। मैंने कहा बताओ मेरे को युक्ति, मैं भी ये युक्ति सीखूं। तो कहा मैंने नक्की किया है कुत्ता तो भौंकता ही रहता है, कुत्ता तो भौंकता ही रहता है, इसलिए वो भौंकने दो, मुझे क्या पड़ी है। तब मैंने नक्की किया कि अगर मैं किसी के ऊपर क्रोध करूं तो सामने वाला मुझे को क्या कहेगा कि ये कुत्ता भौंकता ही रहता है। आज से आप लोग नक्की करना, आप क्रोध करेंगे तो क्या लोग समझेंगे, ये कुत्ता भौंकता ही रहता है। अपने आप को कुत्ते का टाइटल और टाइटल के साथ साथ भौंकने का टाइटल मंजूर जिसको हो हाथ खड़ा करे। तो इसलिए याद रहे आज से क्रोध जो बाबा ने भी कहा छोटा बड़ा क्रोध तो समाज खुद को और सबको तंग करता है। तो जो भी सभी बातें जो है उसको समाप्त करके आना है। दो बातों का होमवर्क दिया है और याद रहे बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है और सद्गुरु भी है। शिक्षक के रूप में होमवर्क देता है। आप में यहाँ से कोई ऐसे बैठे हैं जो स्कूलों के अंदर शिक्षक हो? कोई स्कूलों के अंदर शिक्षक हो ऐसा कोई बैठा है? एक भाई है, दो दूसरा भाई है, दो है। दुनिया में क्या होता है शिक्षक, मैं भी प्रोफेसर रहा हुआ हूँ, 8 साल रहा दो कॉलेजों में। तो हमने देखा है कि शिक्षक होमवर्क देता है, नहीं करके आते हैं तो शिक्षक क्या करता है? आप क्या करते हो? पनिशमेंट करते हो ना, करते हो कि नहीं? जो भी दो भाइयों ने हाथ खड़ा किया ना, नहीं करते हो? आजकल नहीं कर सकते पनिशमेंट, दुनिया में पहले तो करते थे, आजकल कानून बदली हो गया है तो पनिशमेंट हो सकती है। तो उसके आधार पर बाबा भी टीचर है, टीचर के नहीं मानने के कारण होमवर्क नहीं करके आने के कारण क्या होगा वो आप समझ जाओ। इसलिए होमवर्क करके आना, नहीं तो क्या होगा, बाबा की सजाएं खानी पड़ेंगी। और याद रहे बाबा की परीक्षाएं जितनी कठिन है इतनी बाबा की सजाएं भी इतनी ही सख्त है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इसलिए ये दो बातों का होमवर्क करके ना अपने सेवक सेवा स्थान, अपना रहने आदि का स्थान को शुभ कामना शुभ भावना के आधार पर निर्विघ्न बनाना और अपने जीवन के अंदर की जो भी छोटी बड़ी बातें हैं इसको समाप्त तो करना है। ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी रहना। और इसलिए बाबा ने पूछा कि दूसरी सभा जो होंगी मेरे सामने आप सब जो होंगे वो कौन होंगे? निर्विघ्न और दिल पसंद सभा होगी। और फिर सेंटर वालों के लिए कहा है, हम अपने घरों के लिए भी ये बात समझे कि रोज रात को यह याद दिलाना कि प्रॉमिस क्या किया था, प्रॉमिस के मुताबिक हम चल रहे हैं शुभ भावना से, शुभ भावना से रूप में अपने आप से पूछना, टोकने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, गुस्सा करने के लिए पूछना, शुभ भावना के रूप में पूछना, एक दूसरे के सहयोगी बन के पूछना कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मुखी बनकर के कारोबार करने के लिए कहा है। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आज की मुरली का आज के स्लोगन क्या है, खुश रहेंगे खुश करेंगे। फिर डबल विदेशियों के साथ बात किया, बहुत सुंदर बात कही है, अंदर के परिवर्तन के बाद डबल विदेशियों के लिए तो बाबा ने जो कहा है, डबल पुरुषार्थी की रिजल्ट अच्छी है, आपस में मिलते भी है, संकल्प भी श्रेष्ठ किए हुए। इस मुरली नहीं उसके पहले की मुरली में बाबा ने ये बहुत अच्छी बात कही कि अभी सभी विदेशी अपना जो भी संस्कृति थी उसको भूल करके सब कहते हैं हम ब्राह्मण कल्चर के, ब्राह्मण संस्कृति के सदस्य बन गए हैं। उस पर बाबा ने सबको महिमा की, विदेशियों की, भारत के भी बहन भाइयों को ये ब्राह्मण कल्चर को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना ही चाहिए। माफ करना हमारे भाई बहनों, भारत के भाई बहनों ने अभी तक ये संस्कार जो है, विदेशियों ने कोई का कहाँ का होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई रशिया का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, कहाँ का भी होगा, इन सबने अपनी अपना जो भी शरीर के आधार पर बने हुए जन्म के आधार पर जो भी कल्चर था उसको भूल करके ब्राह्मण कल्चर स्वीकार किया। इसका बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिया है। आज तक बाबा ने भारत निवासियों को सर्टिफिकेट नहीं दिया है, अभी तक भी हम समझते हैं तो हम पंजाबी है, हम गुजराती है, मराठी है, हम बंगाली है। इस प्रकार के अपना जन्म का कल्चर को हम लोगों ने भूला नहीं है और हम संपूर्ण रूप में ब्राह्मण कल्चर के सदस्य नहीं बने हैं और इसीलिए भारतवासियों को भी हम ब्राह्मण कल्चर के हैं, ब्राह्मण संस्कृति के हैं। यह स्लोगन, यह रीत, यह रस्म, ये जीवन, ये व्यवहार अपनाने की खूब जरूरत है। और बाबा से जैसे विदेशियों ने सर्टिफिकेट लिया कि सब ब्राह्मण कल्चर के सदस्य बन गए हैं, इस प्रकार से सभी भारतवासी भी ब्राह्मण कल्चर के सदस्य बन गए हैं। इस प्रकार का सर्टिफिकेट बाबा से और हमारी दादियों से हमको लेना ही है। जब तक वो नहीं लिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? बाबा ने कहा हुआ है कि जोन शादी जो बने हुए हैं वो तो खाली निमित्त सेवा के लिए, कारोबार के लिए, कैसे कर सकते इसके लिए, ये कारोबार आधार पर, ये हमारे जोन के आधार पर हम अपने आप को डिवाइड नहीं करें। ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे मैनेजमेंट के लिए है, यज्ञ के लिए। वी हैव डिवाइडेड द इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टली ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स एंड वर्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ विंग्स। ये दोनों प्रकार के जो डिवीजन जो है इनसे हमें मुक्त होना ही चाहिए। हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने साकार मुरली में कहा है मधुबन ही हमारा घर है और हम जहां भी गए हैं वहां पर सेवा के लिए गए हुए हैं। जब विदेशी जहां भी गए हैं सेवा के लिए गए हैं तो हम भी भारत के अंदर जो भी जोन में है, जो भी विंग्स में है, सेवा अर्थ ही है। इसलिए हम ब्राह्मण हैं, बाबा के बच्चे हैं। यही बात सदा सबको ध्यान में रहे। यह ध्यान और ये ज्ञान और यह व्यवहार, ये नीति, ये रीति हम सबको अपनाने की जरूरत है। ये बहुत कड़ी बात है पर आपको बुरा लगेगा, पर मैं हकीकत में आपको बताता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर वी हैव डिवाइडेड अवर सेल्फ, जोन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। क्या क्या करते हैं क्या बताऊं मैं? तो इसलिए ब्राह्मण कल्चर को संपूर्ण रूप से हमें भी भारत में अपनाना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा मधुबन वालों ने, मधुबन को विदेशियों ने मधुबन को उन्नति का साधन बनाया है, तो ऐसे ही भारतवासियों को भी मधुबन को अपना उन्नति का साधन बनाना चाहिए। मधुबन से जो सेवा के प्रोग्राम आते हैं, जो दादियों का पत्र आता है, पत्र पुष्प आता है, उसमें जो बातें आती है उसके आधार पर पुरुषार्थ करना ही चाहिए। फिर टीचर्स के बारे में बात बताई बाबा ने। टीचर्स की बहुत सुंदर परिभाषा दो शब्दों में, अलग अलग शब्दों में कही है। एक है अपने फ्यूचर से फ्यूचर दिखाने वाली। टीचर्स का पहला डेफिनेशन है अपने फ्यूचर से फ्यूचर दिखाने वाली, और दूसरा अपने फ्यूचर से बाप को प्रकट करने वाली। तो मैंने बाजू में ब्रिजमोहन भाई बैठे थे, मैंने कहा ये तो बाबा टीचर्स को ऐसा कहते हैं कि अपने फ्यूचर से बाप को प्रकट करने वाली या अपने फ्यूचर से फ्यूचर को दिखाने वाली। हम तो भाई है ना, हम टीचर है नहीं है, तो हम क्या है? हाँ, मैं आप सब भाइयों को पूछ रहा हूँ, हम क्या है? तो फिर टीचर को ऐसा कहा है, हम लोगों को क्या कहा? कुछ नहीं कहा है। तो सोचना हमको क्या बनना चाहिए। और टीचर्स तो एक सेंटर पर मैं गया, 21 दिन की बहन थी, 21 दिन की वो टीचर बनकर के बैठी थी, क्लास करा रही थी 21 दिन की। और हमारे भाई कई ऐसे हैं वो 21 साल से क्लास में आते होंगे, टीचर बनकर के संदल पर बैठने का चांस नहीं मिलता होगा। ऐसे भी कई भाई होंगे, तो देखो भाइयों के बिचारों की क्या हालत है। तो फिर बाबा ने उनको क्या कहा, मेहनत करना है। सभी टीचर्स को क्या करना है, सभी सेंटर्स को निर्विघ्न बनाना है। यह बाप की आश बच्चों ने पूरी नहीं की हुई है, तो इस साल यह प्रयत्न करना हर एक सेंटर, हर एक जोन अपने सेंटर को निर्विघ्न बनावे। और एक पत्र साथ में लेके आवे कि हमारा जोन या हमारा सेवा केंद्र जो है निर्विघ्न है। हो सकता है तो कईयों ने हिम्मत नहीं दिखाई। बाबा ने कहा कम बच्चे, कम टीचर ऐसी हिम्मत रखते हैं, परंतु बाबा के अभी इस साल ये इस कमाल करके दिखाना, फिर बाबा ने कहा आपका भाग्य देख करके बाप खुश है। और बहनों को क्या कहा टीचर्स को? सभी बहनों को कहा कि दृढ़ संकल्प की माला पहनो। और बाबा क्या चाहते हैं? देखो बाबा टीचर्स की सबके सामने उसकी आबरू जो है मर्यादाओं को बीच में रख करके टीचर्स को से क्या बाबा चाहते हैं वो बाबा ने ऑफिशियली कल मुरली में नहीं कहा। नहीं तो क्या होता है टीचर्स जो स्टूडेंट्स जो है ना टीचर के सारे देखो बाबा ने ऐसा आपको लिखा बाबा ने ऐसा आपको कहा। हम टीचर्स हम स्टूडेंट जो है ना टीचर्स के इस प्रकार से ग्लानी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाबा ने क्या किया बाप दादा क्या जो चाहते हैं वह सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो बाप क्या चाहते हैं आप भी चाहते हो तो जो आप चाहते हो जो बाप चाहता है उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाना। बाबा ने ऐसा कह करके गुप्त इशारा दिया ताकि हम जिज्ञासु जो यहाँ बैठे हुए हैं ना भाई बहन जो भी अन्य जो है वो टीचर्स को इसी बात के लिए परेशान न करे। अरे आपको तो बाबा ने भी ऐसा कहा अरे आपको बाबा ने ऐसा कहा। बाबा कहता है अलग बात है हम बच्चे नहीं कह सकते। हमारे पास कई बहन भाइयों के कई भाई और बहनें जो टीचर्स की फरियाद लेकर के आते हैं। हमने कहा आपको मालूम है इन्होंने जीवन का त्याग किया है आप घर बार का त्याग करके तो दिखाओ और फिर टीचर्स के बारे में कहो। वो भी पुरुषार्थी है हम जानते हैं परंतु आपसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है तीव्रता का पुरुषार्थ उनका है। उनके लिए उनको बाबा ने टीचर्स का पोजीशन दिया तो उसका तो रिस्पेक्ट रखो। फरियादों का कागज सबसे ज्यादा में ज्यादा टीचर्स के बारे में ही हमारे ही भाई बहन लिखते हैं। मेरा उन सबसे अनुरोध है कि कृपया ऐसे पत्र लिखना छोड़ दो अपने जीवन को देखो अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ। टीचर्स की कमजोरी देख करके उसके बारे में फरियाद करने से क्या फायदा। अपनी कमजोरियों को जीतने का प्रयत्न करो ना औरों की कमजोरियों के आधार पर फरियाद करना क्यों करते हो आप। ये मेरी सभी जिज्ञासु भाई बहन जो भी है उन सबसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन की बातें करिए। टीचर्स के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हर सीजन में दादी जानकी हमारी गुलजार दादी रतन मोहन दादी आदि जो भी दादी हैं आदि जो भी है टीचर्स की क्लासेस सेपरेट लेती ही है उनको मार्गदर्शन देती ही है। इसलिए आप टीचर के टीचर मत बनिए ये हमारी नम्र विनंती है। फिर भी किसी को बुरा लगे तो माफ करना परंतु ये नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा दूसरी सीजन में क्या करना है। हाँ फिर बाबा ने लास्ट में क्या कहा हाँ सभी को जो भी कमी उसको छोड़ना ही है यह पक्का है यह पक्का संकल्प करना ही है करके ही जाना है। फिर अभी इस प्रकार से करने का नंबर लेना है। फिर बाबा ने क्या कहा कुछ भी हो जाए हमें अपने को बदलना ही या दृढ़ संकल्प करो और इस संकल्प के द्वारा क्या करो। बाबा ने सीजन की बहुत सुंदर समाप्ति किया। बाबा ने कहा आखिर का समय को समीप लाना है। हम सबकी इच्छा है ना आखिर का समय कौन लाएगा नजदीक। बाबा ने कहा है आप बच्चे ही आखिर का समय समीप को लाएंगे और आखिर का समय को समीप लाना है और हम सबको अपने राज्य में चलना है तो देखेंगे। तो इसलिए बाबा ने सबको लास्ट में कह करके सीजन की मुरली समाप्त किया हाँ कि अभी हम सबको चलने की माना वापस घर जाने की तैयारी करनी है। सारी हाँ इस सीजन की सभी मुरलियों का सार क्या रहा लास्ट महावाक्य में कह दिया बाबा ने कि सबको अभी चलने की मना वापस घर जाने की तैयारी करनी है। सबको यह इच्छा है ना कि सबको यहाँ रहने की इच्छा है। कोई है ऐसा कि हमको जाना नहीं है हम तो यहाँ ही रहेंगे। तो इसलिए चलने की इच्छा है चलने की तैयारी करनी है। फिर बाबा ने आजकल के साधनों के लिए कहा देखने वाले सन्मुख हो या दूर हो दिखा दिया इस प्रकार से कहा। और इस प्रकार से 9:05 पर बाबा ने कल का मेन कार्यक्रम पूरा हुआ। फिर स्टेज का कार्यक्रम हुआ दादियों से बात हुई औरों से भी बात हुई। हमारे से बात जो हुई वो उसमें आई नहीं क्योंकि उसको राजू भाई को सुनने में नहीं आया। बाद में हमने करेक्शन भेजा है तो सेंटर ऑफ मुरली जाएंगी, उसमें हमारी बात आई है। मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज आपके दिव्य अवतरण की ये सीजन जो है समाप्त हुई, अभी 20 तारीख से हमारी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग की सीजन शुरू होगी और वो सीजन 15 जून और 15 जुलाई के बीच में समाप्त होगी और सभी बहनें यहाँ आएंगी, ऑडिट आदि का कारोबार चलेगा। उस पर बाबा ने वरदान दिया कि हाँ वो सीजन निर्विघ्न चलेंगी और सभी कारोबार ठीक रिश्ते चलेगा। इस प्रकार से हमने भी कहा। फिर वीआईपीएस भाई बहनों के लिए बाबा ने कहा अभी आप मेहमान नहीं है, घर के बच्चे बन गए हैं, अपने घर पे पहुंच गए हैं, रास्ता तो देख लिया, तो अभी आते ही रहना। इस प्रकार से बाबा ने उनको कहा। फिर दुबई का मकान जो है उसका भी उद्घाटन किया यहाँ बैठे बैठे। फिर जयपुर का मकान जो है उसका भी उद्घाटन किया। इस प्रकार से बाबा ने ये बात कही। हमको एक दो बात दूसरी भी करनी है क्योंकि अभी 12 तारीख से यह नई ईश्वरीय सेवाओं की मीटिंग के बारे में तैयारी होनी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, मेरा अपना विचार आपके सामने रखता हूँ कि अभी बाबा ने हमको 3 सर्टिफिकेट लेने को कहा है। आप सबको मालूम है, स्वपसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद, मालूम है ना, सबको मालूम है। 3 सर्टिफिकेट लेना है। स्वपसंद हमारी धारणाओं के आधार पर हम स्वपसंद बनेंगे, बराबर है। प्रभु पसंद हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारी सेवाओं के आधार पर। और लोक पसंद का सर्टिफिकेट अभी लेने का बाकी है, लोग भी हमको पसंद करते हैं, इस प्रकार का सर्टिफिकेट लेना है। जैसे इलेक्शन के अंदर क्या होता है, वोटिंग करते हैं, हाँ, तो जो लोक पसंद में सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो एमपी एमएलए आदि बनता है। तो इस प्रकार से हमें भी लोक पसंद का सर्टिफिकेट लेना है ताकि लोग ऐसा समझे कि ब्रह्मा कुमारियों के ज्ञान के आधार पर हमारी समस्याएं दूर हो सकती है। आज की दुनिया में बहुत सी समस्याएं हैं, महंगाई है ना, महंगाई आप सब जानते हैं, सबको महंगाई, सबके सामने महंगाई आती है, तो महंगाई की भी समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, नारी जीवन के बारे में समस्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान ब्रह्मा कुमारी इसके पास है और ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाना चाहिए। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की हमारी अभिव्यक्ति दुनिया के सामने होनी चाहिए। कारण क्या है मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले जगदीश भाई और हम पुणे में इंडियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस थी। हिस्टोरियंस जो थे करीब 2500 आए हुए थे, उसमें 4-5 डिवीजन था। एक प्री हिस्टोरिक माना वेद शास्त्र आदि का समय का जो इतिहास है उसको मानने वाले, इसके 105 प्री हिस्टोरिक पीरियड के हिस्टोरियंस थे। हमने उनका सर्वे किया, 10 सवाल पूछे, 10 सवाल पूछे तो उसके अंदर एक सवाल 9 नंबर का सवाल था कि क्या वो सब शास्त्रों को मानने वाले, गीता को मानने वाले, रामायण को मानने वाले, भागवत को मानने वाले ऐसे थे। इनको हमने सवाल पूछा था जगदीश भाई और हमने बना करके, उसमें पूछा कि क्या गीता में वर्णित, आप ध्यान से सुनिए, गीता में वर्णित स्वर्ग सत्य है या कल्पना है। याद रहे हमने ये नहीं पूछा कि ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा वर्णित स्वर्ग सत्य है या कल्पना है। गीता में वर्णित, अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा है कि अच्छा है मैं स्वर्ग के मैदान में मर जाऊंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा। 9वें अध्याय में भी एक क्षीण पुण्य मृत्यु लगे प्रवेश स्वर्ग से नीचू में आएंगे, ऐसी 8-10 जगह पर स्वर्ग 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 का रेफरेंस गीता में है। और गीता के अंदर, गीता में वर्णित स्वर्ग सत्य है या कल्पना है, हमने पूछा। 105 लोगों को पूछा, सबका जवाब आया, और 5 सिवाय 105 में से 105 में से, याद सुनिए बराबर, 105 में से 100 लोगों ने कहा कि गीता में वर्णित स्वर्ग कल्पना है। आप समझे, गीता में वर्णित स्वर्ग, जो अर्जुन कहता है कि मरने के बाद युद्ध के मैदान में मर गया मैं स्वर्ग में जाऊंगा आदि आदि जो भी है, ये सब कल्पना है। ऐसा इन्होंने 105 में से 100 प्री हिस्टोरियन हिस्टोरिक पीरियड के पंडितों ने जवाब दिया। अगर हमने उनसे पूछा होता कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा वाणी स्वर्ग वो सत्य है या कल्पना है, तो मैं समझता हूँ 105 में से 105 ने ही बता दिया होता, क्योंकि हमने अपना एंड प्रोडक्ट जो है स्वर्ग जो है वो सत्य है, वो दुनिया के सामने सिद्ध नहीं किया हुआ है और इसलिए लोग इसको मानते रही है। तो इसलिए लोग पसंद बनकर के हमारा जो अंतिम सत्य है स्वर्ग है परम धाम है, इन सब बातें जो हमारा ज्ञान जो है इसको दुनिया के सामने सिद्ध करना ही चाहिए और लोग हमारी इन बातों को माने और कहे कि नहीं पवित्रता की शक्ति के द्वारा ये हो सकता है, नारी शक्ति के उत्थान के द्वारा ये हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें दुनिया वालों को सिखानी चाहिए और दुनिया वाले माने। एक जमाना था कि हमारे दैवी परिवार के भाई जो थे वो दुनिया की बातों के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया आदि में आर्टिकल लिखते थे। कानपुर का हमारा एक भाई था, बहुत मीठा भाई था, बहुत अच्छे भाई था, त्रिलोक चंद भाई, बड़े वकील भी था उन्होंने और वो इकोनॉमिस्ट भी था, अर्थशास्त्री भी था। इन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हुए थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स आदि आदि अच्छे अच्छे बड़े अखबारों में आता था। और उस जमाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उन्होंने 3-4 बार त्रिलोकचंद भाई से पूछा था कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। इस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था के बारे में भारत का वित्त मंत्री उस जमाने का श्यामा प्रसाद मुखर्जी त्रिलोकचंद भाई को पूछता था कि इसके ऊपर आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों की क्या राय है। इस प्रकार का भूतकाल था, वर्तमान में कोई भी हमसे नहीं पूछता, ये हकीकत है। ऐसे ही भारत सरकार ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कैद जो होती है वो कितने साल की होनी चाहिए उसके ऊपर केसी पंत करके एक केंद्र सरकार का मिनिस्टर था, उसकी कमिटी बनाई थी उसकी चेयरमैनशिप में, तो उसके अंदर ये प्रश्न था कि आजीवन कैद कितने साल का होना चाहिए। तो हमारे जगदीश भाई ने एक आर्टिकल लिखा था कि हमारे शरीर के जितने भी स्नायु है, जितने भी जो भी है, चाहे आंख है कान है बाल है जो भी है, वो 12 साल में सब बदली हो जाता है। नया शरीर हर 12 साल के बाद हमको मिलता है, पर हम जानते नहीं है, समझते नहीं है कि हमारा नया शरीर है। और इसलिए जगदीश भाई ने लिखा था कि आजीवन जन्म कैद जो है 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो खास केसी पंत ने भारत सरकार की ओर से जगदीश भाई को लिखा था कि आपके हिसाब से आजीवन कैद 12 साल की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कैसे होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने भारत सरकार की तरफ से हमें पूछा था। इस प्रकार से अभी ऐसे हमारा इमेज आपको बढ़ाना है कि आज की भारत की सरकार के सामने, दुनिया के सामने जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने राय के आधार पर, परमात्म ज्ञान के आधार पर सहज उत्तर दे सकती है, सहज मार्ग दिखा सकती है। इस प्रकार का लोक पसंद का कारोबार, और लोग हमको कहे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ऐसा पूछे। इस प्रकार की ईश्वरीय सेवा अभी अंतिम चरण की ये सेवा है, क्योंकि अंतिम चरण की ये सेवा करेंगे तब लोग कहेंगे हाँ कि ब्रह्मा कुमारियां ही अच्छी है और ब्रह्मा कुमारियों के ही हाथ में विश्व का राज्य कारोबार देना चाहिए। इस प्रकार का ट्रांसफर ऑफ पावर कलयुग से सतयुग की दुनिया का अंत में होने वाला है, उसका उसकी नींव, इसका फाउंडेशन अभी हमको जरूर डालना चाहिए। तो इसके लिए लोग पसंद बनना चाहिए, उसके लिए कल बाबा ने भी कहा साइंस के साधनों के द्वारा, हम भी चाहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारे संग्रहालय जो भी है, म्यूजियम आदि जो भी है, वो पुराने जमाने का है, पुरानी कला के आधार पर है, हम उसको नया तरीका से कहें। 4-5 साल पहले जर्मनी का एक भाई होलोग्राम के द्वारा ब्रह्मा बाबा के चित्र बना करके आया था, तो मुझे मिला था और मैं अविक्त बाप दादा के पास उसको लेके गया था, बाबा को दिखाया, तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे ये होलोग्राम के चित्र जैसे ब्रह्मा बाबा का बना है, ऐसे बाबा के ईश्वरीय सेवा के नए चित्र इस ढंग से होलोग्राम आदि के द्वारा बनने चाहिए। तब से हम चाहते थे कि हम होलोग्राम आदि के द्वारा नए तरीके से, अभी तो फ्लैट चित्र बनते हैं, नए तरीके से चित्र बनने चाहिए। अब वो कला, वो सिस्टम, वो विधि, वो साधन भारत में आ गए हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे नए ढंग के डिजिटल जो कैमरा होता है, आप जानते हैं ना, कैमरा में जिन्होंने आपके सबके पास मोबाइल है उसमें कैमरा है, सब फोटो निकालते हैं ना, उसमें फिल्म नहीं है, है फिल्म, फिर भी उसमें कैमरा फिल्म भी निकलती है, उसकी मूवी भी निकलती है। अर्थात नए जमाने का डिजिटल कैमरा है आपके पास, इस प्रकार से नए जमाने के डिजिटल चित्रों के आधार पर कारोबार हो सकता है, होलोग्राम के चित्रों के आधार पर कारोबार हो सकता है, थ्री डायमेंशन। अब तो आपको मालूम नहीं है, हम तो अभी सिंगल डायमेंशन के ही चित्र बनाते हैं, विदेशों में थ्री डायमेंशन पूरा हो गया, फोर डायमेंशन पूरा हो गया और फिफ्थ डायमेंशन के चित्र बन रहे हैं। विदेश इतना आगे है और हम पीछे है, पीछे है, पीछे है। चार पांच साल पहले हमने शांति पीस की किताब छपवाई थी, बहुत अच्छे ढंग से अच्छे कागज पर छपवाई थी, जब जयंती बहन को दिया तो जयंती बहन ने हमको कहा, क्या रमेश भाई ये लंदन में छपाई है या अमेरिका में छपाई, कहाँ छपाई? तो हमने कहा वो तो भारत में छपी है। तो जयंती बहन ने आश्चर्य प्रकट किया कि क्या भारत में ऐसी चीज अच्छी चीज छप सकती है। हम विदेश में गए थे तब विदेश में भी कई लोग पूछते थे, आपके यहाँ ट्रेन है, आपके यहाँ मोटर है, ये सारी ऐसे बोलते थे जैसे कि भारत पिछड़ा हुआ 18वीं सदी में रहता है, ऐसा भारत समझते थे। इसके बदले में 21वीं सदी का भारत है, चाहे हमारे दैवी परिवार समझे, चाहे विदेश के सब भाई बहन समझे, चाहे ऐसे साधनों के द्वारा जैसे आज बाबा ऑनलाइन के द्वारा सारे देश विदेश के अंदर हम बाबा को देख सकते हैं, इस प्रकार का नए प्रकार के चित्रों के आधार पर थ्री डायमेंशन आदि के चित्रों के द्वारा हम ईश्वरीय सेवा अपना मॉडल म्यूजियम आदि नया प्रकार का बनाए। 21वीं सदी में हम हैं तो 21वीं सदी का कारोबार अभी हमारे ईश्वरीय सेवा के अंदर होना चाहिए और इसके द्वारा ईश्वरीय सेवा बहुत बढ़ेंगी। एक टेलीविजन के द्वारा इतनी सेवा बढ़ती है, कल हमारे पास 80% जो भी संख्या बढ़ी थी उसमें से 50 से ज्यादा परसेंटेज लोग जो थे वो टेलीविजन की सेवा के द्वारा आए थे। तो इसलिए टेलीविजन की सेवा के द्वारा इससे संख्या बढ़ सकती है। तो 21वीं सदी के अन्य साधनों के द्वारा सेवा करें, हाँ तो सेवा दिन क्या कहते दिन दुगुना चार चार रात को चार गुना, इस प्रकार से सेवा हो सकती है, संख्या बहुत बढ़ सकती है। और हम समय को, कल बाबा ने जैसे कहा, समय को नजदीक लाने का प्रयत्न करना है, हम बच्चे ही कर सकते हैं। तो हम बच्चे ऐसे समय को नजदीक लाने के लिए मेहनत करने के लिए प्रयत्न करें, तो ये सब बातें करनी है। तो इसलिए आप सब सोचना इस प्रकार के नए प्रकार की ईश्वरीय सेवा।